विपश्यना ध्यान केंद्र की ओर से हर शुक्रवार सुबह 8:10 से 8:35 तक प्रसारित किया जाता है। यह प्रोग्राम आप ऑनलाइन www.planetaudio.org.nz पर भी सुन सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप आचार्य श्री गोयनका जी के साथ कुछ वार्तालाप सुनेंगे।
नमस्कार श्रोतागण, स्वागत है आप सभी का विपश्यना के इस प्रोग्राम में। श्रोतागण, अब तक गुरुजी समझाते आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षा जात पात के भेदभाव को मान्यता नहीं देती। आप तो जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम समाज के हर पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं, हर बात को गहराई से जानते हैं। आज इसी कोशिश में हम हमारे मुसलमान भाई बहनों के त्योहारों को जानने की कोशिश करेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, हमारे मुसलमान भाई बहनों का बहुत ही पवित्र त्योहार ईद आ रहा है। आप जैसे कि हर धर्म के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, तो क्या आज आप हमें मुसलमान धर्म के बारे में कुछ बताएंगे?
सचमुच बेटी, हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद एक बहुत पवित्र त्योहार है। जैसे हिंदुओं का दिवाली है, बौद्धों का बोधि पूर्णिमा है, सिखों का बैसाखी है, इसी तरह से मुस्लिम भाइयों का यह बहुत पवित्र त्योहार है। वैसे एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि संसार में जितने भी मतांतर हैं, उनमें इस्लाम अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतांतर है, उसे समझे। क्या मत होता है, क्या मतांतर होता है? मत वो जिसमें सबकी सहमति हो। हर परंपरा में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका कोई विरोध नहीं करता, सब उसे स्वीकार करते हैं, सहमति है, एक मत है, वो मत हुआ। लेकिन ऐसा भी है कि अलग अलग संप्रदाय में कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सहमति नहीं है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को स्वीकृत है, किसी को नहीं स्वीकृत है। तो जिनमें एक मत नहीं है उसको एक और रखें। इस्लाम में जैसे औरों में भी ऐसी कई बातें हैं जिसमें किसी का कोई विरोध नहीं, उनको देखें, उनकी चर्चा करें। मेरे सामने इस्लाम की कुछ ऐसी बातें आई जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, जिसे कौन अस्वीकार करेगा। दो बेसिक बातें, एक तो ये कि अपने आप को जानो। अरे जो अपने आप को नहीं जानेगा वो अपने दोष दूर कैसे करेगा? वो दूसरों के दोष देखता रह जाएगा, ये ऐसा बुरा है, ये ऐसा बुरा है, ये ऐसा बुरा है। अरे तेरे भीतर भी तो बुराई है, उसको देखना। उसको देखेगा तो उसको दूर कर लेगा। तो अपने आप को इसलिए देखे कि अपने आप को पवित्र कर ले, अपने मन को पवित्र कर ले, उसे प्यार से भर ले। ये दो बेसिक बातें, कौन विरोध करेगा? एक शिविर लगा कच्छ में, निंगाल में, एक बड़ी मस्जिद में। दो मौलाना उसमें शामिल हुए, दोनों बड़े विद्वान, आलिम फाजिल, खूब विद्वान। शिविर खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में दो आयात ऐसी हैं, वो ये साधना करने से बहुत स्पष्ट हुई। तो बताया मुझे क्या है। तो आयत ये है, मन अरफ नफस हु फकत अरफ रब हु। माने जो अपने सांस को देख लेता है, अपने आप को देख लेता है, वो रब को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है। अरे तो ये बात तो सब स्वीकार करती है ना। पंजाब का एक मुस्लिम संत इसी बात को जनता की भाषा में कहता है, हाशम तिणहा ओ रब पछाता, जिनहा अपना आप पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, उसने रब को जान लिया, खुदा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। अपने भीतर की सच्चाई को जानते जानते ही परम सत्य तक पहुंचेगा। उस परम सत्य को चाहे सो नाम दो, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई निर्वाण कहे, कोई मुक्ति कहे, कोई मोक्ष कहे, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। कौन इसको विरोध करेगा? और हम देखते हैं कि परस्पर बातचीत होती है, दो मुस्लिम भाई आपस में मिलते हैं तो एक कहता है सलाम वालेकुम, दूसरा कहता है वालेकुम सलाम। अर्थ क्या है समझना चाहिए। तेरी खैरियत हो, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तुझे शांति मिले, वो भी कहता तेरी खैरियत हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तुझे शांति मिले। इस्लाम शब्द का अर्थ ही शांति है और सत्य को समर्पण है। भीतर जो सच्चाई है उसी को समर्पित है। कौन विरोध करेगा? इसमें विरोध करने की क्या बात हुई? करे तो उसका लाभ मिलना शुरू हो तो सारे झगड़े फसाद को चले जाए, और करे नहीं केवल इसकी पाठ ही करके रह जाए तो क्या होगा? करना है, और करने में हम देखते हैं कि एक तरह की समान बातें हैं जो सबको स्वीकृत है।
शुक्रिया गुरुजी, आपकी इन बातों ने हमें बहुत कुछ नया सिखा दिया। गुरुजी, अभी हमें आप मुसलमान धर्म के बारे में बता रहे थे, इस विषय पे हम कुछ आपसे कुछ और जानकारी पाना चाहेंगे।
बेटी, यही बता रहा था कि जो अनेक सिद्धांतों की बात ऐसी होती है सभी परंपराओं में जो सबको मान्य होती है, ऐसी बातों की चर्चा हुई। मुस्लिम बंधुओं की एक परंपरा हम देखते हैं जिसे रोजा कहते हैं। ये जानकर के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या है रोजा? एक महीने तक पूरे दिन उपवास करेंगे। उपवास करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, लेकिन उपवास करते हैं ध्यान करने के लिए भी। तो इस एक महीने उपवास भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, और जिसके पास कुछ है वो दान भी देगा। क्या विरोध होगा? धर्म की बात हुई ना। तो जो जो अच्छी बातें जहां पर हो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए। इस्लाम परंपरा में ईश्वर को बहुत दयालु मानते हैं, कृपालु मानते हैं, कारुणिक मानते हैं, और बड़ा न्यायपूर्ण है ऐसा मानते हैं। तो उसके गुणों को याद करते हैं। जब कोई मुसलमान भोजन के लिए बैठेगा या कोई और अच्छा काम शुरू करेगा तो याद करेगा, क्या याद करेगा? उसके गुणों को याद करेगा। अल रहमान अल रहीम, कृपालु है, दया है, करुणा है, उसे याद करेगा। और फिर वो अपने अंदर वो गुण आने चाहिए ना, केवल याद करने से क्या होगा? तो इसके लिए जिहाद। अब जिहाद का न जाने क्या क्या अर्थ होने लगा। हम झगड़े वाली बात को एक और रखें, जिहाद जद्दो जिहाद को कहते थे, माने बहुत परिश्रम करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। किस बात का? कि अपने भीतर जो विकार आ गए, अहंकार आ गया, लोभ की वृत्ति आ गई, स्वार्थ का भाव आ गया, उसे कैसे दूर करें, ये जिहाद। क्या विरोध होगा? और ये तो ऐसा काम है कि सारे जीवन भर अपने भीतर जिहाद करना है, अपने भीतर संग्राम करना है। इस्लाम परंपरा में शालीनता, जो खुदा है, रब है, परमात्मा है, वो शालीनता प्रिय है। तो शालीनता प्रिय है तो हमारे जीवन में शालीनता आनी चाहिए ना। ये जद्दोजहद उस काम के लिए कि हमारे जीवन में शालीनता आए। ये जो अच्छी बातें हैं जो जोड़ती हैं तोड़ती नहीं, उनको उजागर करना चाहिए। और वो कैसे धारण किए जाए, केवल उसके चर्चा हो के न रह जाए। मुस्लिम भाई नहीं, बाकी लोग भी तो अपने भीतर के विकारों को दूर करने के लिए सारे जीवन संग्राम करें ना, अपने भीतर संग्राम करें। मंगल होगा, कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, तो कल्याण ही कल्याण होगा। जो व्यक्ति धर्म सिखाता है उसके जीवन में वैसे गुण न हो तो लोगों पर अच्छा असर कैसे पड़े? तो पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम में शालीनता का इतना बड़ा महत्व ये सिखाया तो उनके अपने जीवन में शालीनता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन की एक दुर्घटना, जब नया नया इस्लाम लोगों को सिखाने का काम शुरू किया तो सारे लोग तो एकाएक साथ होंगे नहीं, कोई विरोध भी करेंगे। एक बुढ़िया, उसे बहुत बुरा लगा कि हमारी पुरानी परंपरा को तोड़ के नई बातें कर रहा है, इसमें क्या योग्यता है जो ऐसा कर रहा है? नहीं मानती उसको, विरोध करती है। बुढ़िया है, क्या करे, अब लड़ने झगड़ने लेने थोड़ी जाएगी। तो उसने सोचा कि रोज मेरे घर के सामने से मस्जिद जाता है और उसका फिक्स समय है, इतने समय पर ही जाएगा, तो घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करके एक टोकरी में भर ले और जैसे ही वो घर के नीचे से निकले उस पर टोकरी का कूड़ा सारा डाल दिए। मोहम्मद साहब देखें, कूड़ा डाला उन पर, कपड़े झाड़ लिए, मुस्कराए और चले गए। ये एक दिन की बात नहीं, रोज ऐसे हो, रोज ऐसे हो। और ये व्यक्ति शालीनता का नमूना है ना, क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि उस रास्ते से जा रहा है, ऊपर से कचरा नहीं गिरा। क्या हुआ रे? अरे बुढ़िया की खैरियत तो है, आज उसने कचरा नहीं डाला। तो चढ़ गए उसके मकान पर। अरे बुढ़िया माई, तेरी खैरियत तो है, तू बीमार तो नहीं हो गई, आज तूने हम पर कचरा नहीं डाला। अरे करुणा है, करुणा भी किस पर, जो हमारा विरोधी है, जो हमको कचरा डाल के हमारा अपमान करता है, उसके प्रति करुणा है। ये धर्म के गुण धर्म सिखाने वाले में आने चाहिए। ऐसे एक और घटना, मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, अनेक लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनमें एक भाई ऐसा, वो बेचारा डायबिटीज का रोगी होगा, नमाज पढ़ते पढ़ते उसको पेशाब की हाजत हुई, जोरों की हाजत हुई, अरे कहीं कपड़े ना खराब हो जाए, तो उठ करके वहीं मस्जिद में एक कोने में जाके पेशाब कर दिया। नमाज खत्म हुई, लोग, अरे इतने पवित्र मस्जिद को नापाक कर दिया इसने, तो भागे डंडा लेके उसको मारने के लिए। मोहम्मद साहब रोकते, अरे क्या करते हो, वो बेचारा रोगी है, उस पर करुणा होनी चाहिए, क्या नापाक हो गया? बाल्टी भर के पानी लेता और खुद साफ करता उस जगह को, करुणा है ना। जो विरोधी है, जो इस्लाम को नहीं मानता, उस पर भी करुणा है। जो इस्लाम को मानता है, उसका अनुयायी है, उसका शिष्य है, उस पर भी करुणा है। तो ये जो गुण है, ये गुण इस्लाम के मजहब के मानने वाले लोगों को अपने जीवन में उतारना है, सबको अपने जीवन में उतारना है। अच्छी बातें कहीं से मिले, सबको उतारने चाहिए। तो बेटी, ये जो सौमनस्यता है, शालीनता है, ये गुण है, ये सब में आने चाहिए, सबका कल्याण होगा।
शुक्रिया गुरुजी, आपने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के दो बहुत अच्छे किस्से सुनाए। श्रोतागण, आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। गुरुजी, जब मोहम्मद पैगंबर साहब का विरोध होता था तो वे क्या करते थे?
बेटी, विरोध तो होता ही है। हर संत के जीवन में हम देखते हैं कि कई विरोधी खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये होता है कि कोई एक अनुयायी ही विरोध करने लगता है। उनके जीवन में भी ऐसी एक घटना घटी, उनका एक अनुयायी, उनका एक शागिर्द किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ उसका, ये ठीक नहीं सिखा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, और विरोधी हो गया। अब जब विरोधी हो गया तो तरह तरह की बातें बनाएगा, निंदा करेगा, उनकी निंदा करेगा, उनकी शिक्षा की निंदा करेगा। तो उनका एक दूसरा अनुयायी पैगंबर साहब के पास आया कि आपका जो पुराना शिष्य वो था ना, आजकल आपकी बड़ी निंदा करता है, उस बेचारे को कुछ होश नहीं है, आप चल करके उसे समझा दें तो ये दुष्कर्म करना बंद कर देगा। वो संत आदमी थे, चलो भाई समझा देंगे, अगर किसी को गलतफहमी है तो हमारा धर्म है उसको समझा दें। गए दोनों। इसके पहले कि पैगंबर साहब को समझाते, वो जो साथ आया था वो वकील बन गया, वो समझाने लगा। अब वो तो जैसा था वैसा था, क्या समझाए, झगड़ने लगा, विवाद करने लगा, बातें बढ़ गई, गाली गलौज होने लगी, हाथापाई होने लगी। तो उसने देखा कि पैगंबर साहब, अरे वो चले गए, तो गया भागता भागता उनके पीछे। आप अजीब हैं, जब बात बड़ी हाथापाई हुई गाली गलौज हुआ तो आप खिसक गए। तो पैगंबर साहब मुस्करा के कहते हैं, अरे देख जब तूने गाली गलौज शुरू की, हाथापाई की, झगड़ा फसाद शुरू किया तो तू नहीं जानता मैं जानता हूं, ये फरिश्ते थे ना वो सब खिसक गए। जब फरिश्ते खिसक गए तो मैं क्या करता वहां पर। बात समझनी चाहिए, जहां पर झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, लड़ाई होती है, गाली गलौज होती है, वहां कोई अच्छे देवता नहीं रहते, सम्यक देव नहीं रहेंगे, फरिश्ते नहीं रहेंगे, वहां तो शैतान रहेगा। कैसी तरंगे हैं, जहां प्यार की तरंगे होंगी, मोहब्बत की तरंगे होंगी, मैत्री की तरंगे होंगी, वहां पर सम्यक देव आएंगे, उनको प्रिय लगेगी वो। हम अपने रेडियो के सुई को किस मीटर बैंड पर ले जाते हैं, जहां जिस मीटर बैंड पर लगाया उसके तरंगों से जुड़ जाएगा वो। तो हम अपने मन को किस तरंगों पर लगा रहे हैं, शैतान की तरंगों पर लगा रहे हैं तो शैतान से जुड़ जाएंगे, और फरिश्ते की तरंगों पर लगा रहे हैं तो फरिश्ते से जुड़ जाएंगे। तो कितनी समझदारी की बात है। तो अपने जीवन में ऐसा दिखा करके ही कोई आदमी लोगों को अच्छा धर्म सिखा सकता है। तो ये धर्म की बातें उजागर हो, लोगों में फैले, लोग उसका पालन करें, तो प्यार ही प्यार होगा, झगड़े फसाद नहीं होंगे। तो वो जीवन में उन्होंने करके दिखाया, वैसा लोग पालन करें तो सबका मंगल होगा। बेटी पैगंबर साहब के जीवन की एक घटना और सुनाऊं। ऐसा वाकया हुआ कि वो अकेले कहीं यात्रा कर रहे थे तो देखा पास को एक पहाड़ी में एक गुफा है, तो उसमें चले गए कुछ विश्राम करने के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए। इतने में पीछे से उनके दुश्मनों की फौज आई और वो फौज उन्हीं को खोज रही थी। फौज ने देखा नहीं कि वो गुफा में बैठे हैं, निकल गई फौज। इसके बाद उनका एक अनुयायी मिला उनसे कि आपके पीछे आपके दुश्मन और आप अकेले, आपको डर नहीं लगा? तुम मुस्कराते हैं, ये तुम क्या कहते हो? मैं अकेला कहा, मेरे साथ मेरा ईमान था ना, धर्म था ना, सच्चाई थी ना। अरे जिसके साथ सच्चाई रहती है, धर्म रहता है, ईमान रहता है, वो सदा सुरक्षित रहता है, उसकी कौन हानि कर सकता है। तो जीवन में ऐसी अवस्था हर एक के जीवन में आनी चाहिए कि ईमान साथ है, सच्चाई साथ है, धर्म साथ है, तो सुखी रहेगा।
शुक्रिया गुरु जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें तो इस्लाम धर्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हमेशा की तरह हमारे ये प्रोग्राम का अगला हिस्सा श्रोतागण के प्रश्नों पर आधारित है। गुरुजी, पहला प्रश्न है कि धर्म के रास्ते पर चले तो सर्वाइव कैसे करें?
धर्म के रास्ते पर चले तो खूब सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं सर्वाइव करेगा? धर्म के रास्ते चलते नहीं इसलिए कठिनाई होती है, सर्वाइव नहीं कर पाते। अब किसको धर्म माने? अगर हम सदाचार का जीवन जीते हैं, मन को वश में रखते हैं, मन को निर्मल करते हैं, तो हमारे काम करने की ताकत बढ़ती है। राइट डिसीजन, क्विक डिसीजन, और जो सही डिसीजन होता है तो काम करने की ताकत बढ़ी, काम अधिक होने लगा। हम सर्वाइव नहीं करेंगे, औरों से आगे बढ़ जाएंगे। तो धर्म को ठीक से समझ कर उसका पालन किया जाए तो धर्म हमें मदद करता है। सजग होकर सच्चाई को देख रहे हैं, ताकत बढ़ती है, निर्मलता के साथ ताकत बढ़ती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है, खूब सर्वाइव करेंगे। बोलो
गुरु जी, दूसरा प्रश्न है कि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते तो फिर इस मन का मुक्ति के बाद क्या होगा?
अरे बेटी, जब तू पुनर्जन्म को नहीं मानती तो काहे चिंता करती हो क्या होगा? पुनर्जन्म को मानो या न मानो, इस जन्म को तो मानती हो ना, इस जन्म को सुधारो। धर्म तो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, इस क्षण में जीना सिखाता है। आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा? अरे भविष्य तो वर्तमान की संतान है, क्या भविष्य होता है? समय हम जैसे हैं, वो अब तक के हमारे सारे क्रिया कलापों का ये परिणाम है। हम ऐसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, और अब हम अपने आप को बिगाड़ रहे हैं तो हमारा भविष्य भी बिगड़ा हुआ होगा। अपने आप को सुधार रहे हैं तो हमारा भविष्य भी अपने आप सुधरा हुआ होगा। कोई पूर्व जन्म को मानता है कि पश्चात जन्म को मानता है कि नहीं मानता है? इस जन्म को तो माने, इस जन्म को माने, इस जन्म को सुधारे, और अगला जन्म होगा तो अपने आप अच्छा होगा। नहीं होगा तो क्या खोया हमने, ये जन्म तो हमने अपना सुधार लिया।
शुक्रिया गुरुजी, इसी के साथ आज का ये वार्तालाप यहीं पे समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम माताजी।
विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थी 10 दिनों में साधना की रूपरेखा समझते हैं और इस हद तक अभ्यास करते हैं कि साधना के अच्छे परिणामों का अनुभव कर सके। शिविर का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, रहने तथा खाने का भी नहीं। शिविरों का पूरा खर्च उन साधकों के द्वारा दान में से चलता है जो शिविर में लाभान्वित होकर दान देकर आने वाले साधकों को लाभ देना चाहते हैं। विपश्यना ध्यान केंद्र न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध है। यहाँ का एड्रेस है 153 बर्न साइड रोड मकाराउ कौ कापा कापा। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का ड्राइव है नॉर्थ ऑकलैंड से। यहाँ की वेबसाइट का एड्रेस है www.medini.dhamma.org यानी के www.medini.dhamma.org। यहाँ का फोन नंबर है 09420-5319। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप जरूर से फोन कर सकते हैं। और आप जब भी हमारे सेंटर में विजिट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके सेंटर की विजिट भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रोग्राम एक हफ्ता हिंदी में तथा दूसरे हफ्ते इंग्लिश में बारी बारी से प्रसारित किया जाता है। अगले हफ्ते आप ये प्रोग्राम इंग्लिश में सुन सकेंगे।